राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 जून 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण 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 क्या सुना मुझे कोई बात याद हो तो बताओ। नारायण 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 स्वभाव कैसे सुन रहे स्वभाव कैसे सुन रहे ठीक बात है। वास्तव में स्वभाव ही सुधरता है, परमात्म तत्व को प्राप्त करना नहीं है, उसको नया बनाना नहीं है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त करना नहीं है, उसको नया बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, कहीं उसमें परिवर्तन करना नहीं है, है जो का जो है वो। तो उसको प्राप्त करने के लिए स्वभाव को शुद्ध बनाना है, जिसको अंतःकरण की शुद्धि भी कहते हैं। तो वो स्वभाव शुद्ध बन जाए तो परमात्मा सब जगह दिखने लग जाए। तो पहले ये विचार करना है कि अंतःकरण में अशुद्धि क्या है, हमारे स्वभाव में अपवित्रता क्या है। तो विचार करें तो दो खास अपवित्रता है, एक अपने में अभिमान और एक अपने में कामना आसक्ति, यह अशुद्धि है। अभिमान है वो अपने में ऊंचा बना देता है तो वो उसका उद्धार नहीं होता फिर। और आसक्ति कामना है वो संसार का दास बना देता है, ये ऊपर नीचे बना देते दोनों। अभिमान तो ऊंचा बना देता है और वो संसार का जो नीचा संसार है नाशवान है उसका गुलाम बना देती है। आसक्ति कामना जितनी होती है वो गुलाम बना दे दास बना देती है। परमात्मा की प्राप्ति समता से होती है, इस बात से लिखा यही उत्तेजित स्तर को ये शाम साम्य स्थितम मन, ये शाम मन साम्य स्थितम तई यही वर्ग जित। जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने या जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, और साम्यावस्था में स्थित नहीं है, विषमावस्था में है, राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, उनका असर पड़ता है, तो उसको संसार ने जीत लिया। क्यों जीत में दो ही, संसार में दो ही चीज है, सुख है अथवा दुख है, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, ये संसार का स्वरूप है। और उसका हमारे पर असर पड़ता है, राजी और नाराज होते हैं, खुशी और दुखी होते हैं। तो संसार ने हमारे पर विजय कर ली, और कैसी परिस्थिति आ जाए हम अपने में राग द्वेष हर्ग शोक न होने दें, प्रतिकूल या प्रतिकूल में भी हमें दुख न हो, हमें हलचल न हो, और अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी अभिमान न हो, उस परिस्थिति को देख करके हर्ष न हो, सुख न हो, तो हम संसार को जीत जाएंगे। संसार दो ही चीज है, अनुकूल तो प्रतिकूल, पर मात्र संसार इतना ही है। ठीक है ठीक, अब ठीक बैठी अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न पड़े तो हम संसार को जीत जाते हैं। अब कि यह अनुकूलता प्रतिकूलता का असर कैसे नहीं पड़ता है, तो इसके कई उपाय हैं। एक उपाय है ये एषां मनः साम्ये स्थितम्, मन को साम्यावस्था में स्थित करना। तो मन को साम्यावस्था में कैसे स्थित करे कि अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली है, तो आने जाने वाली का अपने पर असर क्यों हो। जैसे हम दरवाजे पर खड़े हैं और मोटर बहुत आई तो राजी हो जाए, दूसरे दिन मोटर नहीं आई नाराज हो जाए, तो ये तो बिल्कुल मुफ्त में दुख पाना है ना। मोटर बहुत ज्यादा आई तो धूल चंदर उड़ी, क्या फायदा क्या हुआ, और नहीं आई तो अच्छी बात है, स्वच्छ रहे। ऐसे मन के अनुकूल बहुत आ जाए तो क्या है, फंसेंगे, प्रतिकूल आ जाए तो रोएंगे। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने मिलने वाली है, इस वास्ते भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन से शीतोष्ण सुख दुखदा। ये संसार के जो मात्रा स्पर्श है पदार्थों का और इंद्रियों का जो संयोग है, ये शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत नाम ठंडक, अनुकूलता जब हमारे मन के इंद्रियों के शरीर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुकूल होता है ये बात, तो उसमें एक शांति ठंडक मिलती है। शरीर के अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल, मन के अनुकूल, बुद्धि के अनुकूल, और क्या क्या अपने सिद्धांत के अनुकूल जब परिस्थिति आती है तो उसमें हम राजी होते हैं, तो उनका मन पर असर पड़ता है। ऐसे शरीर के प्रतिकूल, इंद्रियों के प्रतिकूल, मन के प्रतिकूल, बुद्धि के प्रतिकूल, और अपनी मान्यता और सिद्धांत से उसके प्रतिकूल आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो सुख दुख है ये है शीत उष्ण। ये शीत उष्ण के द्वारा मानो अनुकूलता प्रतिकूलता मानने के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। इनमें खुद में सुख दुख देने की ताकत नहीं है। हम जिस परिस्थिति को सुखदायी समझते हैं उसमें राजी होते हैं, और जिस परिस्थिति को दुखदायी समझते हैं उससे हम नाराज होते हैं। सबके लिए ये बात नहीं है, सब समय की ये बात नहीं है, संपूर्ण देश की सरकार की ये बात नहीं है, हमारी मान्यता पर निर्भर है। हम मान्यता करते हैं, जिसको ठीक मान देते हैं तो उसे सुखी होते हैं, और बेठीक मान देते हैं दुखी होते हैं। वे मात्रा स्पर्शा तो आगपा पायनो अनित्या, आने जाने वाले हैं अनित्य हैं। तो जब कभी इनका संयोग वियोग हो उसमें आगमा पायरो अनित्या, इसको याद कर रहे हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़े तो जप कर दो आगमा पाई नो आगमा पाई नो नित्या आगमा पाई नो नित्या आगमा पाई नो नित्या मन लगा करके तो ये आने जाने वाले अनित्य है। संयोग भी संसार का नित्य है, वियोग भी अनित्य है। इन दोनों में देखा जाए तो संयोग सर्वथा अनित्य है और वियोग नित्य है। संयोग वियोग में बदलेगा, जीना मरने में बदलेगा, अच्छाई बुराई में बदलेगी, ये नफा घाटे में बदलेगा, ये बदलेगा इसमें। तो ये पक्ष जो वियोग का पक्ष है वो अच्छा है, चाहे अनुकूलता का वियोग हो चाहे प्रतिकूलता का वियोग हो, वियोग अच्छा है। अनुकूलता का संयोग है वो पुण्य का नाश करता है और प्रतिकूलता का संयोग पापों का नाश करता है। प्रतिकूलता का वियोग और प्रतिकूलता का वियोग तो हो गया ही, अनुकूलता वियोग प्रतिकूलता जो संसार की है ये आने जाने वाली है, निश्चित बात है, नियत बात है। संसार एक रूप रहता ही नहीं, तो आने जाने वाली चीजों से क्या सुखी क्या दुखी हो है? अपने रहने वाले हैं, हर समय रहने वाले हैं, उनमें आने जाने वालों के लिए क्या सुखी क्या दुखी हो है? ये तो आने जाने वाले हैं, रहने वाले है ही नहीं। इन दोनों में विचार करो, एक बात पता मार्मिक, अनुकूलता आते हुए अच्छी लगती है और अनुकूलता जाते हुए बुरी लगती है, प्रतिकूलता आते हुए बुरी लगती है, जाते हुए अच्छी लगती है। तो बताओ दोनों में भेद क्या हुआ? ध्यान दिया आपने? हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति बने तो अच्छी लगती है और अनुकूल परिस्थिति चली गई तो बुरी लगती है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो बुरी लगती है, और प्रतिकूल परिस्थिति चली जाती है तो अच्छी लगती है। ख्याल किया? मानो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही एक ही समान हुई, कोई आरंभ में ठीक लगती है वियोग में बुरी लगती है, कोई आया में बुरी लगती है वियोग में अच्छी लगती है, तो दोनों बराबर हुई ना। तो इन दोनों में समान रहता है ये साम्य स्थितम बना, दोनों अच्छी बुरी दोनों है। तो इनमें जो समतावस्था में साम्यावस्था में मन लगता है उनमें संसार को जीत लिया, और ये आने जाने का असर पड़ता है तो हम हार गए संसार जीत गया, हम तुच्छ हो गए, हम दास हो गए, गुलाम हो गए। तो गुलामी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो इसमें गुलामी हो जाती है। प्रतिकूल काम में दुखी होते तो गुलामी है, अनुकूल काम सुखी होते गुलामी है। इस वास्ते इन श्लोकों में यंग ही न व्यसयंत्यते, यंग ही न व्यसयंत्य, ये मात्रा स्पर्श है जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते। सम दुख सुखम किसको जिसके सम सुख दुख सम है। तो यंग ही न व्यसयंत्यते पुरुषम पुरुषार्थ, जिसके व्यथा नहीं पहुंचाते। तो अनुकूलता अच्छी लगती है ये भी व्यथा है, ये एक पीड़ा है, और प्रतिकूलता बुरी लगती है ये भी एक व्यथा है। दोनों का अन्वय व्यथा में हुआ। यंग ही न व्यसन चेते पुरुषम पुरुषार्थ, पुरुषम श्रेष्ठ अर्जुन, जिसको दोनों ये व्यथा नहीं पहुंचाते, किसको नहीं पहुंचाते, सम दुख सुखम सुख दुख को समान करके कर रहे, तो ये था व्यथा नहीं पहुंचाते, न सुख पहुंचाता है न दुख पहुंचाता है, व्यथा नहीं पहुंचाता। अर्थात सुख हर्षई जड दुख बिलखाई दो तुम धीर धरई मनमाई। सुख हर्षई जड और जड दुख बिलखाई, पर धीर पंडित दोनों को समान समझते हैं। वे पंडित होते हैं, पंडित और समदर्शी ना, वे समदर्शी होते हैं, क्योंकि निर्दोष निष्ठम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है। जिसकी दृष्टि निर्दोष और सम होती है वो परमात्मा को प्राप्ति होती है। क्या कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान स्वभाव होता है उनके आपस में, सखा भाव होता है। तो परमात्मा सम है तो हमारा अंतकरण सम होगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जिसको ये प्रथा नहीं पहुंचाते, राजी नाराज नहीं करते, सो अमर तत्व गणपति, वो अमर होने के लिए समर्थ होता है। मुक्त होने के लिए वो समर्थ हो जाता है, मन मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हुआ? सुख दुख से। ना सुख ने असर किया, ना दुख ने असर किया, तो मुक्त हो गए। ना मुक्त नाम छूटना, तो उन्होंने किसी ने हमारे हृदय में हलचल पैदा नहीं की। सुख से राजी होते ये भी चित्त की हलचल है, और दुख से नाराज होते ये भी हृदय की हलचल है। हमारे हलचल मचावे ही नहीं, चाहे अनुकूल परिस्थिति आवे चाहे प्रतिकूल, हमारे हृदय में हलचल न हो, व्यथा न हो, वो अमृतत्व कल्पते, परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ होता है। समर्थ को वस्तु मिल जाती है। तो इनमें मुफ्त में हम दुख पावे, व्यथा भोगे और बंधन में पड़े। एक बात और याद आ गई, 18वें अध्याय में आता है यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रयोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो आरंभ में विष की तरह होता है और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वो परमात्मा विषय बुद्धि सी प्रसन्नता से पैदा होने वाला सात्विक सुख होता है। और विषय इंद्रियों के संयोग से जो अमृत की तरह सुख होता है, परिणाम में महान जहर की तरह होता है, वो राजस्व सुख होता है। तो सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह होता है, ये बात मेरे वर्षों तक समझ में नहीं आई। सात्विक वृत्ति है वो तो शांति देने वाली, आरंभ में कैसे दुखदायी होगी? यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रयोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है, आरंभ में जहर की तरह होता है। तो मैंने समझा भी जहर की तरह कैसा हो, सात्विक वृत्ति तो आनंद देने वाली होती है, आरंभ में जहर की तरह कैसे होती है? कई वर्षों तक ये समझ में नहीं आई। फिर विचार किया कि भगवान ने लिखा है, योग में वहां तो भूल हो नहीं सकती, हमारे समझ में भूल होती है, वहां भूल थोड़ी है। तो फिर विचार करने से एक बात समझ में आई, जो राजस्व सुख में रात दिन रचे पचे रहते हैं, वो राजस्व सुख त्याग करना पड़ता है सात्विक के लिए, उसमें दुख होता है। तो राजस्व सुख का त्याग करने में जिनमें सुख भोगते हैं उसका त्याग करना पड़ता है, इसमें दुख होता है। नहीं तो सात्विक वृत्ति तो सुखदायी होती है। उत्पत्ति सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये तीनों गुण बांधते हैं तत्र उन तीनों में सत्व क्या कर तत्र सत्वम निर्मलत्वात् निर्मल है मल रहित है शुद्ध है और प्रकाशकम सबको प्रकाशित करता है और अनामयम लिखा है अनामयम आमयन रोग है विकार इनसे रहित है वो सात्विक सुख है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन उस समय में सुख होता है और ज्ञान होने से विवेक होकर ये ठीक जागृत होता है तो वो ज्ञान होता है। ज्ञान और सुख इनका संग करे आसक्ति करे तो ये बांधता है तो सुख संगे ज्ञान संगे बदनाती ये तो समझ में आती है बात पर तो निर्मलत्वाद प्रकाशकम अनामयम आदि में दुख कैसे होगा। एक बड़ी मार्मिक बात बतावे गीता में अनामय पद कहा है परमात्मा की प्राप्ति को कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलंग त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंद विनिर्मुक्ता पदंगच्छन् अनामयम निर्विकार पद को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा तत्व का स्वरूप है वो निर्विकार है तो सतोगुण को भी अनामय कहा है। सतोगुण की महिमा बहुत बड़ाई विशेषता से जो तत्व की प्राप्ति होने पर अनामय पद होता है उसका वर्णन हुआ है सात्विक सुख में तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन। तो ऐसा अनामय पद बांधेगा कैसे आर्य में मैजार के पहले कैसे होगा ये समझ नहीं आई हमारे टीकाएं देखी करी टीकाओं से समझ में नहीं आती ये बात। कार्ड की टीका लिखने वाले लिख गए परंतु वे किस भाव से लिखा है वो भाव तक नहीं पहुंचते हम सब पहुंचते नहीं वहां पढ़ करके देखते हैं तो उसमें अपनी बुद्धि की प्रधानता रहती है। मुख से सुनते हैं तो संतों की बुद्धि की प्रधानता रहती है इस वास्ते सुनकर के हम समझ लेते हैं पढ़ करके पूरा समझ नहीं पाते कि उन्हें किस भाव से लिखा है वहां तक बुद्धि है अरे कि जल्दी पहुंचते नहीं। तो भाई लिखा तो है ऐसा तो फिर विचार करने से ये बात समझ में आई कि सात्विक सुख देने के लिए राजस और तामस सुख का त्याग करना पड़ता है तो राजस सुख के त्याग से दुख होता है सात्विक तामस नहीं होता है वो क्योंकि सात्विक को तो रजस तमस चाभी हो या सत्वम भवति भारत रजस तमस चाभी हो या रजोगुण तमोगुण को तिरस्कार करके दबा करके सात्विक होता है तो सात्विक जब वृत्ति होती है तो रजोगुण तमोगुण दबाते हैं तो रजोगुण में जो रस देने वाले आदमी है उनको रजोगुण की चीज सुनाने से दुख होता है। अब वे अफीम खाते हैं उनको अफीम सुनाने दुख होता है बीड़ी सिगरेट फिल्म पीते हैं उनको सुनाने दुख होता है अब दुख की बात है हम पीते नहीं है कोई दुख नहीं है परंतु राजसी तामसी आदमियों को राजसी पदार्थ छुड़ाया जाए तो दुख होता है। तो वो क्या पानराग क्या कहते हैं उनको पानराग पान पराग तो पान पराग है जो नशेली चीज है खराब है और बहुत भ्रष्ट गर्मी की चीज है और इतना उसमें बनाने वाले नशेली चीज डालते हैं जो उससे एक नशा आता है वो सुख मिलता है तो छोड़ सकते नहीं और नुकसान ही नुकसान है फायदा किसी तरह का नहीं है किंचित मात्र भी परंतु छोड़ नहीं सकते। तो ये सात्विक सुख कब मिलता है उसके त्यागने से मिलता है तो वो राजस्तामक सुख के त्याग का दुख होता है, वो सात्विक पुरुष का दुख नहीं होता। तो आगे आरंभ में क्या होता है कि राजसी तामसी सुखों का त्याग करते हैं तो दुख होता है। जैसे नींद आ रही है तो नींद छुड़ाने से दुख होता है, तो तामसी वृत्ति छुड़ाने से दुख होता है। बालक को जगा दिया जाता तो रोएगा, जग जाता रोता है, क्योंकि सुख में जो नींद में जो सुख मिलता है वो जागृत में सुख मिलता नहीं। तो वो राजसी तामसी सुख का संबंध विच्छेद होने से दुख होता है। सात्विक में सुख के दुख कैसे होगा? तो सात्विक सुख मिला तो रजस तमस अभिभूत, रजोगुण तमोगुण दोनों को दबा करके सात्विक होता है। तो वो दबाते हैं उसमें दुख होता है। फिर ये समझ में आई बात कि भी बात तो ठीक है, परंतु सात्विक से दुख होता नहीं, वो तो आनंद देने वाला सुख संगेन्द्र ज्ञान संगेन सुख होता है उसमें। तो सुख की आसक्ति होती है उसे मानता है, तो सुख को बारंबार मानेगा कैसे? तो ये जो आदत है, अपने बुरे व्यसन है, खराब चीजें है, इनका त्याग करने में दुख होता है। तो खराब चीजें है, व्यसन है, चीज अच्छी थोड़ी है, परंतु अच्छी वो सेवन करने से अच्छी लग जाती है। गीता में कहा ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्य सुपजायते, विषयों का ध्यान करने से उस मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, प्रियता हो जाती है। पहले पहल अगर किसी को धूम्रपान कराया जाए तो धुएं के भीतर जाते ही पूरा लगता है। एक साधु को पूछा, महाराज आप धूम्रपान करते हैं कि पीते तो नहीं, लोग पाए देते कि लोग कैसे पाए दे कि गाड़ी में बैठे हैं ऐसे करे तो हजार क्या करें, जबरदस्ती पा दे, नशा जलने लग जाती है, पर करें क्या। तो आप कोई दुख हुआ और कोई दुख दिया तो उसका परिणाम तो पाप ही होगा। किसी के भी मन के विरुद्ध बात करोगे तो उससे पुण्य थोड़ा ही होगा। तो ऐसे दूसरों को दुख देते हैं, जला देते हैं। हम बैठे थे थर्ड क्लास में यहाँ आने के लिए दिल्ली से, तो ऊपर एक बैठा था भाई, उसने बीड़ से लगाई और थोड़ी डाली, हमारा कपड़ा जल गया। तो कपड़ा जलाने का कोई पुण्य होगा क्या? तो ऐसे व्यसनों से दूसरों को दुख होता है, अपने को दुख होता है, दुनिया माध्यम दुख फैलाता है। और जैसे सत्संग करने वाला सत्संग में लगाएगा तो चिलम पीने वाला चिलम में लगाएगा, बीड़ी सिगरेट बीड़ी में लगाएगा, प्रचार करेगा ही सोते ही। तो वो जो व्यसन है उनका त्याग करने में दुख होता है, ये दुख है। सात्विक वृत्ति में तो सुख ही सुख है, सुख संगेन बदनाती और रजोगुण कर्म संगने में बदनाती, और तमोगुण तो निद्रा प्रमादाल से निद्रा भी, इनमें संग करने की जरूरत नहीं। तो संग करना सुख का जो सुख होता है तब संग होता है। तो सात्विक तो इतना ऊंचा है, वो सुख सात्विक अनामय है, निर्विकार है। तो उसमें आलम में राजसी तामसी वृत्तियों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का उसमें त्याग किया जाए, उसका व्यसन है, इस वास्ते दुख होता है। तो दुख होने पर भी इसका त्याग करना चाहिए, अगर भी सुख हो जाएगा। क्यों आग्रह पहले विष की तरह है, परिणाम में अमृत उपमम, परिणाम में अमृत की तरह होता है। तो परिणाम बड़ा अच्छा होगा, इसका नतीजा बड़ा अच्छा होगा। तो स्वभाव को शुद्ध बनाना हो तो जो बुरे व्यसन है, चाय है, कोकन है, धूम्रपान है, जर्दा है, अफीम है, भांग है, सरस है, ऐसे दोष है ना, जो व्यसन है तरह तरह, दूसंच मध्यम पिशंच वेश्या, पापर चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्तव्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकं नयन्ति। सात व्यसन है, व्यसन सो सौ बात रे और जावरा दिया बन जाता है। ये चौर्य से पकड़ते हैं। देखो संत होते हैं वो आपके घर भिक्षा को आवे तो आप कुछ मत बोलो चल जाएंगे और कह दो महाराज हम तो भिक्षा नहीं देते तो चल जाएंगे। तो महाराज अब भिक्षा नहीं है तो चले जाएंगे। पर डाकू आ गया वो कह के धन नहीं है चल जाएंगे। आप नहीं बोलो तो चल जाएंगे। तो दुष्ट आदमी जबरदस्ती पकड़ते हैं, ऐसे ही दुष्ट व्यसन जबरदस्ती पकड़ते हैं। और भजन ध्यान जप है ये छूट जाते हैं, महाराज भूल जाते हैं क्यों जबरदस्ती करते नहीं। ये सात्विक चीज शहरी दुष्ट करते हैं जबरदस्ती। जो दीर्घ निर्गुण दुराचार जितने व्यसन है ये जबरदस्ती पकड़ते हैं। आप नहीं चाहते फिर पकड़ते हैं। अर्जुन ने कहा कि महाराज ये पाप है तो ये पाप का आचरण मनुष्य क्यों करता है। अथ केन प्रयोगतोयम् पापम चरति पुरुष अनिच्छन् अपि। पाप करना कोई चाहता नहीं क्योंकि पाप का फल दुख होता है। तो दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो दुख अच्छा नहीं लगता तो दुख जिसका फल है वो करेंगे क्यों। तो पाप को नहीं चाहते लोग फिर भी महाराज पाप करते हैं तो अथ केन प्रयोगतोयम्। अर्जुन ने कहा महाराज कोई प्रेरणा कर देता है, कोई कान पकड़ लगा दे, नहीं तो स्वयं लगाना चाहता नहीं तो ये कौन लगा देता है। तो भगवान ने कहा काम है ऐसा क्रोध है ऐसा काम, जो नाशवान वस्तुओं की इच्छा है उसका नाम है काम। भगवान की भजन की जो इच्छा है वो काम नहीं है, वो तो प्रेम है। पापम चरति पुरुष अनिच्छन् अपि। पाप करना कोई चाहता नहीं क्योंकि पाप का फल दुख होता है। तो दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। तो दुख अच्छा नहीं लगता तो दुख जिसका फल है वो करेंगे क्यों। तो पाप को नहीं चाहते लोग फिर भी महाराज पाप करते हैं तो अथ केन प्रयोगतोयम्। अर्जुन ने कहा महाराज कोई प्रेरणा कर देता है, कोई कान पकड़ लगा दे, नहीं तो स्वयं लगाना चाहता नहीं तो ये कौन लगा देता है। तो भगवान ने कहा काम है ऐसा क्रोध है ऐसा काम, जो नाशवान वस्तुओं की इच्छा है उसका नाम है काम। भगवान की भजन की जो इच्छा है वो काम नहीं है, वो तो प्रेम है। ये जो नाशवान वस्तु है और जो अहितकर वस्तु है, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली वस्तु है, परलोक को बिगाड़ने वाली वस्तु है, परमात्मा तत्व से विमुख करने वाली वस्तु है, वे वस्तु जबरदस्ती पकड़ते हैं। दुष्टों का संग करना नहीं चाहिए, करने तो ये जबरदस्ती पकड़ेंगे। और संतों का संग करो ये जबरदस्ती नहीं करते हैं। ये तो करो भाई ठीक करो, कोई चला जाए तो भाई जाओ मर्जी है क्या करे। पर दुष्ट पुरुष तो जबरदस्ती उनको वैसे ही था। एक बंगाल में सज्जन मेरे से कलकत्ते रहता था, उससे घूमने हुए तो एक बंगाली ब्राह्मण मिल गए। उसने कहा महाराज हमारे घर भिक्षा करो। तो मैंने कहा भिक्षा कैसे करे, तुम मछली खाते हो तो मांस तो खाते, मांस मछली को मांस कहते हैं, मांस खाते हैं। तो वो क्यों खाते हो कि महाराज मेरे ऐसी आदत थी। उसने अपना जीवन बताया, मेरे को मछली अच्छी नहीं लगती थी और खिलाते तो उल्टी हो जाती थी। तो फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी खिलाते खिलाते उसमें आदत बनाई। क्यों बनाई कि महाराज मछली बिना लोग अंधे हो जाए, क्या कोई मछली भी नहीं खाता है क्या। उसी ये बैल मछली तो सभी खाते, अगर मछली न खाए तो अंधे हो जाए। बंगालियों में है कि मछली खाने से ही नेत्र की दृष्टि ठीक रहती है, अस मछली न खाओ तो अंधा हो जाए आदमी। तो ऐसे खिला खिला कर मेरे को आदत डाली तो भाई हम तुम्हारे घर का भिक्षा कैसे करें बताओ। तो मछली है, मांस है, अंडा है, ऐसी ऐसी अशुद्ध चीज है, तो ऐसे कैसे करके। मैं ब्राह्मण हूँ, तुम बड़े आदरणीय हो आप, परंतु भिक्षा कैसे करें। तो इसने उसने सुनाया तो लोग जबरदस्ती ये बुरी चीजें खिलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, दाढ़ी पकड़ के अफीम दे देते हैं। आपने देखा तमाशा ऐसा, कहने लोग चलना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती खिला देते हैं। अब 5-7-10 अब खिलाए फिर भी खाने मिल जाते हैं, और खाने में रस लेते हैं। मैंने देखा है अफीम खावा है, खूब चबाते हैं। हमारा जैसा बुरा होता है, बहुत खराब होता है स्वाद में, पर वो उसको आनंद आता है। जो खिलाते हैं चिबाते हैं दादी देर, तो वो अमल उगता है, नशा करते हैं, और अमल गाला जाए तो बड़ा उत्सव मनाते हैं, गाना बजाना करते हैं, अमल गाली हो बोले ये अमल गाल बड़ा वो पीते हैं तो बड़ा अच्छा मानते हैं। गोष्ठी होती है, सगे संबंध इकट्ठे होते हैं, तो वहां फिर अमल गाड़ते हैं, अमल गाड़ के सब वो गाड़ के पिलाते हैं, सब उत्सव मनाते हैं, गाना बजाना होता है, गीत गाते हैं, ढोली गाया करते हैं, तो उसका उत्सव वो लेते हैं। हम चले गए थे भाटी पर, मैं विष्णुपुर बिकुमपुर उधर उधर गए थे, एक गाँव में गए तो हमारे साथ हमारे गुरु भाई रामधर जी महाराज थे और सीताराम जी थे, तो सबको ध्यान लगा लो अमल लो, अमल अमल लेना है, प्रेम है, ये अमलरा हो गया, अमलरा हो गया, उसको बस भेमेल हो गया, जहाँ खटपट होती अमल नहीं देखती, उनके घर का अमल नहीं देखती, अमल लेता तो भेमेल हो जाता है। तो ये हम लोग आते सीताराम जी, सीताराम जी बोले लो मना लो, अरे मैं भाव को नहीं हो बाया कर मन भाव को नहीं, मैं आज सुन लिया वो क्या बाया बोली, मन भाव को नहीं कोई बने की चीज वगैरह, पर वो खाते खाते इतने मस्त हो जाते हैं, खूब मुख में चबाते हैं, तब उसको अमल उगता है, अमल उग गया फिर शक्ति आ जाती है शरीर में। तो ये जो व्यसन है ये बुरे हैं, बुरे जबरदस्ती करते हैं, जैसे डाकू चोर जबरदस्ती करते हैं, और जो सत्य है सत्य बात वो जबरदस्ती नहीं करते, वो तो फिर आप लग जाओगे फिर आप नहीं छूटेगा। सत्संग में भजन में आप लग जाओ और वहाँ आनंद रस आने लगेगा, फिर मेरा सत्संग नहीं छोड़ सकते आप, आपके हाथ की बात नहीं है, फिर छूटेगा ही नहीं, उसमें रस आता है। बच्चों को दूध पिलाओ तो छोड़ता ही नहीं, जब छोड़ा छटपटा लग जाए छोड़ता ही नहीं, अब अमृत की तरह रस आता है कैसे छोड़े, ऐसे सत्संग में आनंद आता है। तो दुष्ट जैसे जबरदस्ती करते हैं, ऐसे दुर्व्यसन दुर्गुण ये जबरदस्ती करते हैं, इनको मुंह मत लगाओ नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अपन पद गाया करते हैं बजरंगा कि ये चायरिया ने इसने मुंडे लगाई तेरे को, तो इसको मुंडे लगा दो बस बस जयराम जी, फिर नहीं छोड़ने गई है कजू की बूटी। तो ऐसी बात है, तो इन व्यसनों का त्याग करो। अगर आप अपना स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाना चाहते हैं तो ये जो व्यसन है इनसे दूर रहो, शुद्ध बनाओ अपने जीवन को, निर्मल बनाओ तब स्वभाव शुद्ध बनेगा। आप शुद्ध बनाना चाहते हो और अशुद्ध चीजें सेवन करोगे तो शुद्ध कैसे बनेगा। अब इनसे आगाड़ी चलोगे तो पाप का पैसा मत लाओ, अपने पास का पाप का पैसा आएगा तो पाप करने से पैसे अशुद्ध हुए, और पैसों से अशुद्ध चीजों खरीदोगे, फिर अशुद्ध रीति से बनाओगे, वो भोजन करोगे तो अंतकरण मैला होगा। यादृशम भक्षयत् चान्नम बुद्धिर्भवति तादृशी दीपकस्तिमर्वस्नाति कज्जलञ्च प्रसूयते। यादृशम भक्षयत् चान्नम जैसा अन्न खाया जाएगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो उसकी वजह से वृत्तियां खराब हो जाएगी। याद सम्भवान बुद्धि भक्ति तादृशी कैसे कि घर में दीपक करो आप, तेल का दीपक जगाओ, तो दीपक क्या करता है कि अंधेरे को खाता है, अंधेरे मिटा देता है। तो पैदा क्या होता है, काजल पैदा होता है, तो काले को खाओ काले ही पैदा हो। तो बुद्धि से खराब खाओ तो बुद्धि खराब होगी, परिणाम खराब होगा, फिर शुद्ध कैसे होगा, अंतर्गत निर्मल कैसे होगा। तो खराब दर्शन है वो छोड़ो। और एक बात और बताने, ये संग है इसका असर बहुत पड़ता है। मैं तो भगवान के नाम का जप और सत्संग, इन दोनों में अच्छा संग है उसको मैं मुख्य मानता हूँ। मेरी वृत्ति में विचार में सत्संग का बड़ा भारी महत्व है। अच्छा संग करेगा तो उसका रंग चढ़ेगा ही। तो अच्छा संग करना, अच्छा संग क्या, जो अच्छे पुरुष हैं, वास्तव में जो ऊंचे उठे हुए हैं, वैराग्यवान है, त्यागी है, भगवान के प्रेमी है, उनका संग करने से स्वतः शांति मिलती है। स्वाभाविक अपना उद्योग करना नहीं पड़ता। इस वास्ते कहता हूँ कि सत्संग करना, एक तो एक भजन ध्यान अभ्यास योगाभ्यास करके ऊंचा बढ़ना, तो योगाभ्यास है, भजन ध्यान है, जप है, कीर्तन है, ऐसा अकेला करके ऊंचा बढ़ता है तो वो कमा करके धनी बनता है। और सत्संग मिल जाता है तो वो गोद चला जाता है। अब गोद वाले को क्या मेहनत करनी पड़े, वो तो आज कंगला और कल लखपति। तो सत्संग में कमाया धन मिलता है। जिन पुरुषों ने वर्षों मेहनत करके जो बातें उपार्जन की है वो सत्संग में घंटा भर में कई बातें कह देते हैं, तो उनको कितना समय लगा, हमें तो बना बनाया मिल गया। हम लोग भिक्षा को जाते हैं तो साग रोटी सब छाती मिल जाती है, बनाने में कितनी गंध पड़े, रोटी बनाने में कितनी गंध, एक साग बनावे तो साग चाहिए, चकू चाहिए, सुधारना चाहिए, उसमें हल्दी लाओ, धाना लाओ, जीरा लाओ, साग लाओ, चपेली लाओ, उसमें घी डालो, तो कितनी मेहनत करने साग बनता है, हमारे उसी तरह मिल जाए चटखाना शुरू कर दे। तो सत्संग में ऐसी बड़ी बनाई रसोई मिलती है, तो इसमें तृप्ति होती है स्वतः स्वाभाविक। एक दिन की बात है, सिर जी रहते हुए एक बात हुई थी, तो जोधपुर कहीं जा रहे हैं तो क्या स्वामी जी सत्संग सुना दो कर जाओ, तो सुनाने लगा तो मैंने क्षमा कर देना भाई, मैंने कह दिया था, आज ही कह रहा हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ। मैंने कहा आप लोग तो पत्थर हो, आपको सुना हुआ आप मानते तो हो नहीं, बस आचरण तो करते नहीं हो, सुनते ही सुनते हो, आप हो तो पत्थर पर हो गंगा जी के, गंगा जी के प्रश्न गोल गोल हो जाए, वो टकराते सुंदर सुंदर हो जाए। तो सत्संग बैठे बैठे आप ही गोल हो गए, आप हो तो पत्थर हो गंगा जी का जरूर है। तो सत्संग में बैठने वाला रहने वाला स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है। बड़े बड़े शास्त्री पंडित अच्छे धुरंधर विद्वान वो कथा कहते उन कथा में दोष आ जाता है, परंतु जो वास्तव में परमातत्व को जानने वाले हैं उनका संग करने वाले में बड़ी विचित्रता आ जाती है, स्वाभाविक उनमें विलक्षणता आ जाती है स्वाभाविक संग से। तो सत्संग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, अपने स्वभाव की शुद्धि, अपनी निर्मलता स्वाभाविक होती है, स्वतः होती है। गंगा जी है ना, इससे पत्थर शुद्ध होते हैं। मेरे गंगा जी एक किनारे सोने का काम पड़ा बहुत बार, पहले रेता रहता ऊंचा ऊंचा, उस रेतों को ऐसा करके ठीक गंगा जी के पास हो गया। तो सोचा तो गंगा जी का हरा 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 ध्वनि आती है और एक खर 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 एक पत्थरों की ध्वनि आती है, वो दूर से पता नहीं लगता, पर तो हम पास में सोए तो कान के पास में तो खर 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 मन पत्थर और गुरु तैरते हैं, वो डूबते डूबते पश्च ऐसे गंगा जी छोड़ में सुने हुए बड़े सुंदर नींद में घट जाते हैं। ऐसे सत्संग के प्रवाह में पड़े पड़े निर्मल हो जाते हैं, स्वाभाविक निर्मल हो जाते हैं। वो प्रवाह ऐसा ये सत्संग का है। तो सत्य का संग सतनाम परमात्मा के साथ प्रेम हो जाए वो सत्संग है, परमात्मा के साथ खींच हो जाए ऐसे सच्चर्चा है। जब तक संग नहीं तो सच्चर्चा है, और कर्म दिया और सत्कर्म है, और भगवान का चिंतन है वो सत्चिंतन है। परंतु हमारे सत्संग करते हुए सत के साथ संबंध होता है वो सत्संग है, उसका तो बहुत ही लाभ होता है। सुधाम प्रसंगात गंभीर संवेदो भवंति हित करण रसायना कथा तत्षणा दास्तपवक वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्ति रनुक्रमे क्षति। सुधाम प्रसंगात श्रेष्ठ पुरुषों के संग करने से वहां भगवान की कथा होती है। सुधाम प्रसंगात सत्संग प्रसंगात भगवान की कथा होती है, तब उस कथा के सेवन करने से श्रद्धा रति और भक्ति अनुक्रम से हो जाती है। क्यों कि वहां मन वीर समझो भगवान कहते हैं मेरे पराक्रम को मेरे प्रभाव को जानने वाली कथा होती है। तो पराक्रम और प्रभाव की कथा सुनते से भगवंत हित करने में सहाय ना करता है, हृदय कानों को रस देने वाली, हृदय को भी रस देती है, कानों को भी रस देती है। तो जो शनाथ उसे सेवन करने से आशु अपवर्ग वर्तमानी मुक्ति के मार्ग में श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेश्वरी अनुक्रम से भक्ति हो जाती है, परमात्मा प्रेम हो जाता है। तो सत्संग के द्वारा स्वभाव का सुधार होता है। पर एक बात है कि सुधार करना चाहे उनका बहुत जल्दी होता है, न करना चाहे तो परसों तक करने पड़ी उसमें शुद्धि नहीं आती। शुद्धि जरूर आती है पर थोड़ी थोड़ी सी मेहनत की जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो विलक्षणता आती है, उसमें शुद्धि आ जाती है। तो सत्संग से अंतर्गत शुद्ध होता है, सद विचारों से संग शुद्ध होता है, और भक्तों के चरित्रों से आप जान लो। ये बात विशेष कहता हूँ, बड़ी सरल रीति है अंतर्गण शुद्ध बना के लिए, अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो सत्संग करने से अच्छी अच्छी बातें स्वतः आती, स्वाभाविक सुनने में आती है, उनसे अंतर्गत निर्मल स्वतः होता है स्वाभाविक ही। तो ये गोद चले जाना है तो वे बड़े धनी बन जाते हैं स्वाभाविक ही। आसन दो मैंने आसन दो आसन दो हाँ वो बात कहता था। तो भक्तों के चरित्रों को पढ़ने का एक एक तरीका है। भक्त बालक भक्त नारी भक्त सप्तमन भक्त पंचरत्न भक्त कुसुम भक्त सरोज प्राचीन भक्त प्रेमी भक्त ऐसी पुस्तकें हैं छोटी 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 सी। उन भक्तों के चरित्रों को अगर पढ़ा जाए ठीक तरह से तो बिल्कुल शुद्धि आती है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए आप कृपा करिए भाई बहन ध्यान दें मेरी बात की तरफ। भक्तों के चरित्र को पढ़ना तो पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाए और आंसू आने लगे उस समय में पुस्तक वहां बंद कर दे और अपनी तरफ से नाम जप कीर्तन प्रार्थना भगवान से करना शुरू कर दे और खूब कीर्तन करे अथवा जप करे अथवा प्रार्थना करे हे नाथ हे नाथ हे प्रभु ऐसे। तो हृदय गदगद होता है ना, उस हृदय में संस्कार जल्दी पड़ते हैं। चित्त द्रव्यंत जतवत स्वभावं कठिनात्मकम् तो चित्त है वो कठिन कठोर है, जैसे मोम होना ही कठिन होता है, परंतु अग्नि में रखने से तप जाता है, कटोरी में रखकर सुमो में रखो तो गल जाता है। मधुसूदनाचार्य ने जतुवत का लाख की तरह बताया, चित्त देव बिंदु जतुवत स्वभाव कठिन ना करूंग, वो कठिन है तो वो त्यवित हो जाता है। काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दय ताप का चित्त जतन तत्शांत कठिन तत्। तो ये तापक है, तो सत्संग करने से तो भक्तों के चरित्र पढ़ने से चित्त द्रवित होता है, तो शिथिल हो जाता है चित्त। तो शिथिल में प्रार्थना की जाए, नाम जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, भगवान से कहा जाए, तो वो बात भीतर चुन जाती है। जैसे पिघले हुए मोम में आप रंग डालो तो वो सब में जम जाता है, और ऐसे पिघला नहीं है जिसमें रंग लगाओ तो ऊपर तो लग जाता है, पर लग से उतारो तो उतर जाता है, बीच में ही बैठता। ऐसे चित्त जब द्रवित तो होता है तो अच्छी अच्छी बातें उसमें बैठ जाती है। तो भक्तों के चरित्र पढ़ने से भगवान की कृपा दर्शन होता है, कृपा करने से चित्त द्रवित होता है, द्रवित होने से भगवान के गुण प्रभाव इधर उधर बैठ जाते हैं, तो वो स्वभाव शुद्धि आ जाती है। क्यों? भगवान की कथा उन्हें शुद्धि आवेगी, भक्तों के चरित्रों से शुद्धि आवेगी। हेतु रहित जग दुग उपकारी, तुम्हारे सेवक सुत भगवान और भगवान के सेवक, ये सदै ही बिना हेतु हित करने वाले हैं। तो उनका संग मिलने से, उनकी कथा पढ़ने से अंतःकरण निर्मल होता है, स्वभाव सुख ही शुद्ध होता है। आप जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, वैसा ही अपने पर असर पड़ेगा। तो संतों के, भक्तों के चरित्रों के पढ़ने सुनने से बड़ा लाभ होता है, विस्तृत लाभ होता है। तो भक्तों के चरित्र ऐसे पढ़े, तो पढ़ते पढ़ते जहाँ हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, वहाँ जितनी देर चाहे जो भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान में चित्त लगाओ, वो करते करते जब आंसू सूख जाए, गदगद में न रहे, तो जहाँ ये आया उसे एक दो पन्ना पीछे से फिर पढ़ो, वहाँ पढ़ते ही वैसा हो जाए तो फिर रुपये लग जाओ। पुस्तक पढ़ना पूरी करना नहीं है, अपने को अपने चित्त को द्रवित करके भगवान में लगाना है। जहाँ लग जाए वहाँ पुस्तक बंद करो, फिर प्रार्थना नाम जप कीर्तन ये करने लगो, करते करते आंख सूख जाए, हृदय गंभीर भाव मिट जाए, तो एक पन्ना पीछे से पढ़ते वहाँ आते ही हो गया तो बस उतना ही पढ़ लो, फिर पढ़ते पढ़ते जहाँ ऐसा हो जाए वहीं पढ़ो। इस रीति से आप कृपा करके पढ़ करके देखो, स्वभाव शुद्ध होगा, निर्मलता आ जाएगी जरूर ही। मैंने कहा इस रीति से पढ़ो, तो ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, बड़ी उन्नति होती है, तो चित्त शुद्ध होता है स्वभाविक ही। अब महाराज से प्रार्थना करूंगा आप कुछ फरमाओ, यहाँ पता जाए सुना, वो ठीक किया है तो कुछ सुझाव सुना।
असंगानंद जी भागवतानंद जी, असंगानंद जी भागवतानंद जी आए जी, परमात्मा
असंगानंद जी महाराज भागवतानंद जी महाराज,
वो ठीक है। हम तो मान जी यहाँ पधारे और जो पधारे सुना है, आप पधारे हैं तो आपसे लाभ होना चाहिए दुनिया को। लोग आए
सुनने के लिए आए थे,
हम सुनने के लिए आए बोले,
पहले पूरा अपना बोल
बैठे,
माइक
बैठे नहीं, यहाँ आ जाते।